Sorry, someone was asking me if they can make a phone call. I said the phone is going to be busy after 1 hour, for 1 hour. I don't know if we'll be live for 1 hour. If you can find some Sridandi Maharaj or Shyamarani Didi, we can do some live katha. But let me explain you what's going on in here. Of course, today is the last day of the Parikrama. Today is the Garpunima. And of course, there's also the solar eclipse. Very auspicious day. We're supposed to be fasting till 7 p.m. And that's when we break our fast. As compared to yesterday. Yesterday was very rainy, cold, and soaked day. Today is nice, bright, and sunny. Very, very sunny day. Very nice day. Well, yesterday was still better. It was a little challenging. So I'm inside the temple complex here. For those of you who have not been here or have been here but have not seen the actual temple, I'm just going to explain you how this building is coming up, and as I also will be keeping my eyes open for any Maharaj who can do some katha in English. So as you enter the gate, main gate, on the right side, just right across as you enter the main big gate, there is a three-story guest house. It's a pretty big, massive building. So those are the guest house. And then as you walk past that guest house, which is immediately right as you enter the temple complex, the makeshift, they have put up like makeshift shops, the pandals using the cloth. So immediately after the guest house is the registration, where devotees, those who come, they're expected to register. And then we have two small shops. One was for homeopathic clinic. That was a charitable clinic which was run by a local doctor here. And then another one was a clinic that we set up for Bhakti Pragyana charitable medical services. So we did those services for the last 2 days almost nonstop from 5 to 11 or almost midnight yesterday. And then there is a food stall. One Prabhu is selling hot milk, juice, soda, sandwiches, and all that stuff. And then immediately after that is the temple. So there is a temple. Right now it's closed. And I'm not sure if that's the permanent place for our temple, but that's at least a temple for now, because the construction is still under progress. And then right after the temple is where there is a small, not really small, but not very huge as well, where the devotees sit. And right across, like at the very far end, is a raised platform where Gurudev and other sannyasis come, and Gurudev gives his evening katha, Hari katha. So that's on my right. On the left is again another structure coming up. I'm not sure. Seems like it's not going to be rooms. Seems like, I'm not sure, but could be the temple could probably move there. More like a hall, I guess, when like the next Parikrama comes in, the local devotees, those like people come here in thousands and thousands, like 10,000 or more. So they can stay in these halls, I'm assuming, like dormitories, like huge. So, but everything is still under construction. So I was speaking to devotees who were here last year. They said they have done a remarkable job, what they saw last year, and just in the matter of 1 year, I'm like, a lot of construction has happened. So I'm assuming by next year, it's still going to be much more in a better completion. So there's some bhajan going on. I'll try to bring you like 10 minutes, 15 minutes bhajan as I still look for sannyasis who can give us some harikatha. So here's some lecture from the temple.
Oh, my God.
Sitaram, is the room clear for the bhajan?
Yes, I can hear.
Okay, better now. Lead singer is singing very nicely, but the other, there are other devotees who can sing very nicely. Maybe Isa Prabhu can look up which page number is there. Or if someone knows the page number, can message Isa Prabhu and he can tell others.
Okay.
Page 125. Page 125. तुम्हारी कथा इन हिंदी
I'll be back.
The shlok that they're going to read is very important shlok. You must try to memorize the shlok. It's a very, very important shlok. Everyone should remember it. People create thousands of avatars of God every day, new avatar. But when you ask them for evidence, they're silent. They have no evidence.
Answering the questions of Navi Maharaj, quoted this word that Maharaj quoted this word that Maharaj just stated that really is the proof who is the incarnation of Kali Yuga.
The shloka is there.
We should worship and how we should worship. Because Maharaj is saying everybody who is in the line of Chaitanya Mahaprabhu must memorize this verse, because we see so many sampradayas, upper sampradayas, they also say that their incarnation, their worshipable Lord is incarnation. He, you know, somebody who has incarnated, he is also Kali Yuga avatar. So how we can build them, we can cite this verse from Bhagavatam. Bhagavatam is Avalam Pramanam. So this verse is the one that we should all memorize. And Prabhupada has explained this verse to signify how it really applies to Mahaprabhu and Mahaprabhu's qualities and Mahaprabhu's the prata, the way he said this.
कौन गुरुजी हरे कृष्ण ओ उधर होगा जब गुरुदेव गुरुदेव
इस श्लोक का एक एक शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु के लक्ष्य कर रहा है उस श्लोक में शब्द है कहते सुमेधा सुमेधा का तात्पर्य होता है कहते विवेचना कहते कलयुग में लोग कहीं घर घर सारा दुनिया पूजा कर रहे हैं ये मेरे गुरुदेव ये जगत गुरु ये भगवान 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 सारा दुनिया बोलते लेकिन उस श्लोक में कहते जो तुम्हें दसा कलयुग में जो बहुत ही बुद्धिमान है जो विवेकी होंगे हाँ मूर्ख लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ वो बुद्धिमान के लिए बता रहा हूँ वो क्या करेंगे इसको उपासना करेंगे तो किसान मतलब होता है जिनका अंग की शांति जिनका मतलब होता है जिनका अंग कांति जिनका शरीर का रंग कहते वो क्या है कहते कृष्णा मतलब कृष्ण नहीं कृष्ण मतलब काला काला नहीं आ मतलब यही कृष्णा मतलब कृष्ण नहीं फिर क्या है गोरा अब मतलब ये नहीं मतलब ये है काला नहीं मतलब वो देखने में काला नहीं मतलब क्या है वो देखने में गोरे नहीं इसलिए बोलते हैं वो काले नहीं है इसलिए अकृष्ण मतलब कृष्ण नहीं वो गोरे हैं और क्या करेंगे जब अकृष्ण गोरे हैं और तब उनको साथ में कौन कौन होएंगे तो उनका परिकर को बताते हैं कहते सांग पांग अस्त्र पार्षद कहते उनको साथ में उनका अंग होएगा कहते उनका अभिन्न स्वरूप कौन है कहते उनको साथ में अभिन्न स्वरूप राधा रानी भी उनका अभिन्न स्वरूप भी है अभिन्न स्वरूप राधा जी भी है और अभिन्न स्वरूप उनका बलदेव प्रभु भी है राधा जी भी है बलदेव प्रभु इसलिए उनके साथ में दोनों भी आते हैं इसलिए अभिन्न स्वरूप में जब राधा रानी का नाम लोगे फिर उनको साथ में गदाधर पंडित भी है और अभिन्न स्वरूप रूप में जब हम श्री बलदेव प्रभु को ग्रहण करेंगे तब वो कौन होंगे कहते श्री नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ में है इसलिए बताए उनको साथ में अंग है और उनको केवल अंग नहीं कहते उपांग भी है उनका जो उपांग मतलब उनका जो प्रकाश है कहते वो कौन है कहते ये एक में तो उनका अंग एक नित्यानंद वो अद्वैत क्योंकि दोनों भगवत तत्व है ये दोनों अंग में आ गए कहते उपांग में आते हैं उप अंग उनको जितने सारे परिकर है कहते परिकर में कौन है कहते श्रीपाल आते जितने सारे भक्त लोग हैं ये उपांग में आते ही और उनके साथ में कहते जितने सारे भगवान से बगैर अस्त्र के तो कोई आए नहीं राम का धनुष है कृष्ण का चक्र है सभी कुछ ना कुछ अस्त्र है नारायण का शंख चक्र गदा प्रश्न है यदि इनका अस्त्र क्या होगा तब अस्त्र में रखिए हरिनामानी कहते उनका केवल कलयुग का अस्त्र होगा हरिनाम रूपी अस्त्र है लेकिन ऐसे का अस्त्र है वो उसी अस्त्र से ज्यादा काम करने वाले हाँ धनुष और चक्र से भी ज्यादा काम करने वाले ये अस्त्र है उसको द्वारा तो उन्होंने किसको मार दिया मार करके किसको घेर दिया लेकिन महाप्रभु ने क्या दिया
प्रभु कैन यू होल्ड दिस फॉर 5 मिनट्स We're doing, I have to just go. This is a direct broadcast we're doing on Pure Bhakti Dot TV. I'll be just back in 2 minutes. Okay. Please, Maharaj.
This is Harinam. Harinam is the reserve of the land. Reserve is your town, crowd, low, war. This is our fault, whatever the culture. Our reserve is the reserve. Reserve is your culture, the reserve. Harinam is the answer to the land. Both cards. And reserve is the frame card. इसलिए उनको साथ में कहते हरिनाम उनका अस्त्र है कहते उनका पार्षद कौन है कहते उनका परिकर कौन है कहते गदाधर तो रामानंद स्वामी जब ये सबसे सब उसको परिकर हो गए, जब ये तो हो गया परिकर है, सर तो हम करेंगे क्या? हाँ वो क्या करेंगे? तो जितना बोलो ही बोलना, आपको तो क्या क्या परिकार हो
Thank you. Hey, Isha Prabhu, still there? Isha Prabhu?
And he has also settled all our incarnations. Lord comes with his weapon. And Ramchandra, he is holding a dhanush, a bow, an arrow. And Krishna, Varahamihi Krishna also, he is holding a chakra, Sudarshan chakra. But in this incarnation, he is not holding any astra, and he is delivering them by the means of Sankirtan. And yesterday in Vilai Madhai Leela, everyone watched that how Nityananda Prabhu, he delivered Vilai and Madhai Mahaprabhu. So what did he do? Sudarshan chakra, but Nityananda Prabhu stopped him and said, no, in this incarnation, we have promised that he will not hold any weapon. So in this incarnation, Mahaprabhu has converted the heart. He has converted the heart of all those who are demoniac mentality. He has not killed them, but by the means of Vrindavan Sankirtan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He has changed their heart and they have become devotees. And the examples are Jagari and Madhai and Chandrakati.
So Ratanam Prabhu is doing the katha in Hindi and then other devotees are translating in English. You still there, Itadas Prabhu?
कभी वहां पर कभी कृष्णा वर्णम पिता अकृष्णा कृष्ण हो गया
कृष्ण प्रभु
इनको करेंगे क्या क्या कैसे होएगा कृष्णा वर्णम लेकिन कृष्णा श्री और कृष्णा जो दो वर्ण है क्या होगा कभी वहां पर हर समय एक दो अक्षर वृत्त करते रहेगा मतलब जो कि हर समय कृष्ण केशव पाहुना जो हर समय कृष्ण का नाम कृष्ण होते हुए भी वो करेगा क्या यदि कृष्णा की जो दो वर्णा इसको जुआ पर हर समय उच्चारित होगा और क्या कहते संकीर्तन प्राय कहते हमको जो पूजा करने वाले होंगे उनको किस रूप से उनको पूजा करेंगे कहते संकीर्तन प्राय प्राय संकीर्तन का मतलब होता है कहते संकीर्तन करने किसको हम बोलते ना संकीर्तन करेंगे कहते संकीर्तन का मतलब होता है कहते बहु भी का कहते वह कीर्तन कहते वह संकीर्तन कहते संकीर्तन उससे कहते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके जब उसको कीर्तन करें वो होता है संकीर्तन इसलिए कलयुग में एक अकृष्णा मतलब वो गौर हरि को क्या करेंगे कहते संकीर्तन यज्ञ के द्वारा लोग उनको पूजा करेंगे हाँ और जिसको जहाँ पर केवल जो कृष्ण जो नाम है हर समय उच्चारित होएगा इसे कहते हैं यज्ञ ही यज्ञ ही का मतलब होता है ही मतलब होता है सेवा इसका मतलब होता है उनका केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही कलयुग में उनका उपासना होता है ये सब तो द्वारा बता रहे हैं कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से छोड़ करके अगर कोई यज्ञ करेगा कोई ध्यान करेगा कोई उपासना करेगा तो उसको फल मिलेगा नहीं फल नहीं मिलेगा केवल उनको उपासना केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही उनको उपासना करनी चाहिए इसलिए यहाँ पर संकीर्तन को यहाँ पर यज्ञ शब्द बताया गया
है
तो वहाँ पर प्रश्न करते हैं कहते यज्ञ शब्द क्यों उन्होंने प्रयोग किया यज्ञ के लिए हमें पुत्र चाहिए लकड़ी चाहिए घी चाहिए अग्नि चाहिए मंत्र चाहिए इतने सारे चीज
फोन पकड़ के विल बी बैक इन 5 मिनट्स सर. ये फोन पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा, ये फोन से सब दुनिया में जा रहा है. किसी को फोन देना नहीं और इधर से जाना नहीं. हम किताब लेके आता है, फोन देना नहीं और जाना नहीं. ठीक है, नहीं कर रहे, माइक से आ रहा है. ठीक है, जाना नहीं और देना नहीं, देना नहीं, जाना नहीं.
वो क्या है जो भावनाएं प्रकट हो रही थी, जो प्रेम प्रकट होगा वही इसका आदमी. हाँ, इसलिए यहाँ पर ये हरिनाम संकीर्तन को यहाँ पर यज्ञ सत्र बताया गया है. इसलिए कई युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे केवल इसी मंत्र को द्वारा उपासना करेंगे. इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लेना. इसका एक एक जो शब्द है कई युग में हरिनाम संकीर्तन तो द्वारा ही उपासना करनी चाहिए और केवल महाप्रभु के पास जाए. ये इसको बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर बता रहे.
What are you saying in detail this verse that we are continuing? Tisha Varnam Krishna, Krishna Varnam Tisha Krishna. So what is the function, what is it to do? He is chanting these two Varnas.
आ रहेगा ना, मेरे को 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, बस मैं आ रहा हूँ.